परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है। हम यही चाहते हैं कि इसी लगन और रुचि के साथ हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र लिखते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पौलुस द्वारा लिखी गई गलातियों के नाम पत्रिका विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पत्रिका मुख्य विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगी, मुझको है पता नीचे धरती ऊपर आसमान
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने और मनन चिंतन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उन श्रोता मित्रों का जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर अपने आशीषों को पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से और SMS के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों हम सब गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे गलातियों की पत्री के 4 अध्याय से, जिसमें हमने देखा कि आत्मा हमें परमेश्वर के पुत्र होने का अनुभव प्रदान करता है, जिसके कारण हम परमेश्वर को अब्बा या पिता कह करके पुकारते हैं, हे पिता, क्योंकि आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। इस प्रकार हमें परमेश्वर के पुत्र होने का अनुभव प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे अत्यंत जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे मध्य में हो, हम में से प्रत्येक से बोले और बातचीत करें। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, उसे समझ सकें, सीख सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन में निराश, दुखी और परेशान है, जो बीमार अवस्था में है, किसी प्रकार के तनाव में है। हमारी प्रार्थना है उन सबको आप अपने शांति प्रदान कीजिए, ताकि प्रत्येक जीवन आप में आनंदित होने पाए। इस अध्ययन पर भी अपने आशीष प्रदान कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, बहुत से विश्वासियों के विचार में यह अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको या तो पवित्र अर्थात अत्यधिक शुद्ध होना या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना होता है। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि आप इस स्तर पर नहीं आ जाते तो आपको अनुभव प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परमेश्वर पिता के पुत्र होने के विषय में। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप विश्वास में नए हैं या आपका विश्वास दृढ़ नहीं है, तो आपको इस स्तर पर पहुंचे बिना ही पुत्र होने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मसीह में विश्वास के द्वारा आप पुत्र बन जाते हैं। आत्मिकता का ऊंचा स्तर प्राप्त कर लेने के बाद विश्वासी अपने आप को आपसे अधिक धर्मी समझने लगते हैं, परंतु सच तो यह है कि हम सदा ही परमेश्वर के मूर्ख बच्चे हैं। हम में अज्ञान, हठ और पाप और भय और दुर्बलता भरी है। हम अच्छे नहीं हैं। अच्छा तो मसीह है, उसमें विश्वास हमें यह अनुभव प्रदान कराता है। मैं अनुभव पाने में विश्वास करता हूं और आज बहुतों को परमेश्वर का अनुभव पाना है। पॉल रेडर, एक महान प्रचारक, ने कुछ अद्भुत बातें कही है। एक बार प्रचार करते हुए उन्होंने कहा, आपका और मेरा पुराना स्वभाव एक मरी हुई बूढ़ी बिल्ली के समान है। आपको जो करना है वह यह है कि उस मरी हुई बिल्ली को पूंछ से पकड़कर जितनी दूर हो सके उतनी दूर फेंक दें। काश मैं अपने पुराने स्वभाव से छुटकारा पा सकता। एक दिन डॉक्टर शेफर ने उन्हें यह उदाहरण देते सुना तो बाद में उनसे बोले, पॉल, आप भूल गए कि बिल्ली के 9 जीवन होते हैं। आप उसे आज फेंक दे, वह कल फिर आ जाएगी। हम परमेश्वर के सिद्ध संत नहीं हैं, अर्थात हम नहीं बन सकते हैं। हम मसीह में विश्वास के द्वारा पुत्र होने का अनुभव अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप पुत्र हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा आप में डाली है, जो पुकारती है अब्बा पिता। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। मुझे स्मरण है कि डॉक्टर मैगी कहते हैं, जब मैं कैंसर के ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था तब मैं बहुत ही अधिक भयभीत था, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ और मुझे अस्पताल अच्छे नहीं लगते हैं। मैं अस्पतालों के लिए परमेश्वर का आभारी तो हूँ परंतु वे मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं ऑपरेशन का कपड़ा पहने हुए और बैठने का प्रयास कर रहा था। नर्स ने मुझसे पूछा, क्या आप अस्वस्थ हैं? मैंने कहा, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब वह मुझे ऑपरेशन के लिए तैयार करने आई तब मैंने उससे कहा, मुझे कुछ क्षण कृपया अकेला छोड़ दें। मैं एक पास्टर होने के नाते उस अस्पताल में सैकड़ों बार गया था, परंतु इस समय मैंने हिजकिया की नाई दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं यहाँ सैकड़ों बार आया हूँ और मैंने रोगियों का हाथ पकड़कर कहा है, तुम्हारे साथ परमेश्वर है। मैंने उनके लिए प्रार्थना की और मैं चला गया, परंतु आज मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मेरा ऑपरेशन होना है और मैं यहाँ रहूँगा। मैं नहीं जानता कि परिणाम क्या होगा। मैं परमेश्वर से बहुत सी बातें कहना चाहता था, मैं उसे बताना चाहता था कि उसे कैसे काम करना है, परंतु मेरा गला रुंध गया और मैंने कहा, हे पिता, मैं तेरे हाथों में हूँ, तू जैसा चाहे वैसा कर, तू मेरा पिता है। वह मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही समय पर वह वास्तविक पिता होता है। मेरे मित्रों, यह डॉक्टर मैगी की अपनी गवाही है। मैं नहीं जानता कि आपके साथ किस प्रकार की वास्तविकता बीती है जिसमें आपने पिता कह करके परमेश्वर को पुकारा है। मेरे मित्रों, हमें उसका अब्बा पिता का अनुभव पाना है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मैं आपको कष्टों में देखना नहीं चाहता हूँ, परंतु कष्टों में ही परमेश्वर हम पर प्रकट होता है। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन आपको भी अद्भुत स्वर्गीय पिता का अनुभव प्राप्त होगा। मेरे मित्रों, कई बार जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है और जब हम ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, इलाज करा करा करके, तब हम परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि को उठाते हैं और वह चाहता है कि हम उससे निहारें, उससे अब्बा और पिता कह करके पुकारें। मैं आगे बढ़ने से पूर्व एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक प्रचारक अपनी नई दुल्हन के साथ प्रचार क्षेत्र में गया। प्रथम पुत्र प्रसव में उसकी पत्नी और उसका बच्चा दोनों ही मर गए। उसने उन्हें अपने ही हाथों से दफन कर दिया। वह नरभक्षियों के मध्य में सेवा कर रहा था। वह कई दिन उनकी कब्रों पर बैठा रहा कि नरभक्षी उनकी लोथ खोद कर ना ले जाएं। उसकी गवाही है कि यदि मसीह यीशु उस समय उस पर वास्तविक अनुभव न बना होता तो वह पागल हो जाता। अंधकार के समय परमेश्वर का वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। बंदी गृह में पौलुस कहने योग्य था। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 16 और 17 पद में, मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातीय सुन ले। प्रभु पौलुस के साथ खड़ा था। वह जॉन पेटन नामक प्रचारक के साथ खड़ा था। वह मेरे साथ खड़ा था। वह आपके साथ खड़ा होगा। ऐसा पिता पाना कैसी महान आश्वासन की बात है। ऐसे समय में वह कहता है इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय उसके 5 पद में, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप उसके पुत्र हैं तो वह अपनी वायदे को पूरा करेगा। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और न ही कभी त्यागेगा। गलातियों के पत्र 4 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। ध्यान दीजिए, पौलुस गलातियों की सत्यता का उल्लेख करता है कि वे मूर्ति पूजक थे। आज भी कई लोग उस स्थान पर भ्रमण के लिए जाते हैं जहां सातों कलिसियाएं थी, और वहां पर यह बोध उनको होता है कि वे पूर्ण रूपेण मूर्ति पूजा में लीन लोग थे। पौलुस कहता है कि मूर्तियां कोई वस्तु नहीं है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में पौलुस मूर्तियों को मुख कहता है। वे कुछ नहीं कह पाती हैं। पौलुस गलातिया के विश्वासियों को लिखता है कि मूर्तियां न तो जीवित हैं और न ही अपने उपासकों को अनुभव प्रदान कर सकती हैं। गलातियों के पत्री 4 अध्याय उसके 9 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने तुमको पहचाना अर्थात परमेश्वर द्वारा स्वीकृत आप किए गए हैं। वे विश्वास करके मसीह के पास आए थे और परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। गलातिया के कलीसिया के अधिकांश विश्वासी अन्य जातियों में से थे, और पौलुस कहता है कि यदि वे व्यवस्था का पालन करेंगे तो यह मूर्ति पूजा में लौट जाने के बराबर था। जहां से वे आए थे फिर से वे वहीं जाने का यत्न कर रहे हैं। गलातियों के पत्री 4 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। दिनों को मानते हो अर्थात सप्त का दिन। पौलुस ने कुलुसियों की कलिसिया को लिखा, 2 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। महीनों संभवतः नए चांद का पर्व। राजाओं के युग में भविष्यद्वक्ताओं ने इसराइल को इसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। नियत समयों अर्थात पर्व, परमेश्वर ने इसराइल को 7 पर्व दिए थे जो प्रभु यीशु की ओर संकेत करते थे। वर्षों विश्राम वर्ष, इन सब के पालन द्वारा अन्य जाति विश्वासी मूसा की व्यवस्था के अधीन हो रहे थे। आज रूढ़िवादी विश्वासी कहते हैं कि वे व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, परंतु वे केवल सप्त के दिन को ही मानते हैं। मेरे मित्रों, व्यवस्था एक ही है जिसमें विश्राम वर्ष जुबली वर्ष भी है। याकूब अपने पत्र 2 अध्याय उसके 10 पद में कहता है कि पूरी व्यवस्था का पालन करने के बाद एक ही बात में यदि आप चूक जाते हैं या चूक हो जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है, अर्थात वह व्यवस्था के उल्लंघन का दोषी होता है। इससे हम जानते हैं कि आप कोई भी क्यों ना हो व्यवस्था पालन करके धर्मी या अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकते। गलातियों के पत्र 4 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। पौलुस बड़ी मृदुता पूर्वक कहता है कि उसका परिश्रम व्यर्थ हुआ, क्योंकि उनके द्वारा व्यवस्था पालन का अर्थ था उनका मूर्ति पूजा में फिर से लौट जाना। वह उन्हें स्मरण कराता है कि उन्होंने व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर को नहीं जाना, उन्होंने मसीह यीशु में विश्वास करके परमेश्वर को जाना और अनुग्रह द्वारा उनका उद्धार हुआ है, अच्छे कर्मों के द्वारा से नहीं। पद 12 से 18 पद में व्यक्तिगत बातें कहता है पौलुस, उनमें कोमल शब्द प्रवाहित कर रहा है। आइए हम पढ़ें गलातियों के पत्र 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूं, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। ध्यान दीजिए, तुम मेरे समान हो जाओ। गलातिया के विश्वासी झूठे शिक्षकों द्वारा भरमाए गए थे और सच प्रकट करने के कारण वे पौलुस को बैरी समझ रहे थे। पौलुस उनसे कहता है, हम सब एक ही स्तर पर हैं, हम सब विश्वासी हैं, सब मसीह की देह में हैं। अतः हमें एक दूसरे के साथ नम्रता का व्यवहार करना है, जिस बात को वे समझ नहीं पा रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं गलातियों के पत्र 4:14 में, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। पौलुस अपने देह के कांटे के बारे में उनकी सराहना करता है। यह कांटा क्या था, आइए हम आगे देखें। गलातियों की पत्री 4:15 में लिखा है, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते। ध्यान दीजिए, पौलुस की देह का कांटा उसकी आंखों की कोई परेशानी थी जिसके कारण वह घिनौना या कुरूप लगता था। मैं समझ नहीं सकता कि यदि उसे नई टांग लगाने की आवश्यकता थी तो वे उसे अपनी आंख निकालकर क्यों देते। निश्चय ही पौलुस को आंखों का रोग था जो वहां प्रचलित था, और इस रोग में आंखों से मवाद बहता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके मध्य सेवा करते समय पौलुस कैसा बुरा दिखता होगा। कई बार जब हमें आंख आती है और हमारे आंखों से किच्ची निकलता है तो हम घबरा जाते हैं और हम उसे देखना नहीं चाहते। पौलुस कहता है कि उन्होंने उसकी इस दशा को अनदेखा करके उसे और उसके प्रचार को सब प्रेम स्वीकार किया था। गलातियों के पत्र 4:16 में हम पढ़ते हैं, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? मैं सदा ही यह चाहता हूं कि प्रचार मंच पर प्रचारक के सामने लिखकर रख दूं, महोदय हम यीशु को देखना चाहते हैं। मेरी कलीसिया में एक भद्र प्राचीन ने जब मुझे यह कहते सुना तो उसने मेरे ही सामने ये शब्द लिखकर रख दिए थे। एक और पद है जिसे मैं कलीसिया के समक्ष लिखकर रखना चाहता था परंतु मुझ में साहस नहीं था। वह पद पौलुस के शब्दों में था, क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? आज की कलीसिया प्रायः प्रचारक से सच सुनना नहीं चाहती है। वे तो केवल कान को लुभावने वाली और खुजलाने वाली बातों को सुनना पसंद करते हैं। आज के प्रचार मंच से पीठ सहलाने का काम बहुत किया जाता है और सत्य का प्रचार बहुत कम किया जाता है, और यही कारण है कि बहुत सी कलीसिया आज मसीह की संगति में उसके वचन में नहीं बढ़ पा रही है। गलातियों की पत्री 4:17-18 में हम आगे पढ़ते हैं, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भली मनसा से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। पौलुस कहता है कि सर्वोत्तम बात की खोज करना सबसे उत्तम है, परंतु यहूदी विश्वासी तुम्हारी खाल उधेड़ने पर तुले हुए हैं। वे तो दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने गलातिया में कितने लोगों को विश्वास में लिया जो वास्तव में सच नहीं होगा। लगभग यही बात पौलुस ने कुरिन्थ के विश्वासियों से कही थी, जिसे हम 2 कुरिन्थियों 12:12-15 में पढ़ते हैं, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार की धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे? केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न डाला, मेरा यह अन्याय क्षमा करो। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति वरन तुम ही को चाहता हूं। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए पर माता पिता को बच्चों के लिए। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? मेरे मित्रों, यही यहूदी दल कुरिन्थ भी गया था। कुरिन्थ के विश्वासी भी पौलुस से प्रेम करते थे, अतः वह उन्हें सावधान करता है। झूठे प्रचारक बहुत आकर्षक होते हैं। मैं पूजा पद्धति के प्रचार से बड़ा ही अचंभित होता हूँ। उनका सब काम बड़ा आकर्षक होता है और उनके सहभागी भी सुंदर होते हैं। वे सत्य का कुछ अंश भी प्रकट करते हैं। मैंने ऐसे ही एक झूठे प्रचारक से टीवी पर बड़े दिन की कहानी सुनी। उससे अच्छा कहानी सुनाने वाला मैंने नहीं देखा। परंतु जब उसने प्रचार करना आरंभ किया तो वह विश्वास ही नहीं कर रहा था कि यीशु का जन्म एक कुंवारी से हुआ था। कुरिन्थ और गलातिया की कलिसिया को दी गई पौलुस की चेतावनी हमारी पीढ़ी के लिए भी अति उपयुक्त है। मेरे मित्रों, कई बार हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। पौलुस गलातिया के विश्वासियों और कुरिन्थ के विश्वासियों से कहता है कि वे अब परमेश्वर के संतान हैं। अब उन्हें वापस लौटने की आवश्यकता नहीं है, उस झूठी शिक्षा को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है जिसमें वे जी रहे थे। उसे उन्होंने छोड़ दिया, अब उसमें जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं या नहीं। यदि आप करते हैं और फिर से आप वही जीवन जीना चाहते हैं जो वर्षों पूर्व आप जीते थे, वही पापपूर्ण जीवन, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम उससे फिर कर प्रभु की ओर आए, क्योंकि उसने मुझे और आपको बचा लिया है। मेरे मित्र, आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। आपने इस बात को जान लिया है कि जिस प्रकार गलातिया के विश्वासी झूठे शिक्षा की ओर बढ़ रहे थे, पौलुस ने उन्हें चेतावनी दी ताकि वे उस ओर ना जाएं। आज आपके लिए भी यही चेतावनी है ताकि आप प्रभु के संगति में बढ़ें। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Let's go.
मुझको है पता